نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آخرت پر ایمان، بلیف ان ڈے آف ججمنٹ، ایمان بالغیب سیریز میں سے آج ہمارا ٹاپک ایمان بالآخرہ کے اندر ہے. اور ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ انسان، میدان محشر اور قیامت کی حقیقت. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آخرت کیا ہے. لفظ آخرت آتے ہی ذہن میں ایک تصور آتا ہے، ذرا سا اس کو سمجھیے. آپ دیکھیے کہ زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. زندگی کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ آپ اور میں کیا تھے؟ روح تھے. ہم سب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد کیا کیا؟ ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا. صحیح حدیث سے بات ملتی ہے، سورۃ الاعراف کی آیتیں ہیں جس میں وعدہ الست کا تذکرہ ہے. الستُ بربکم قالوا بلا. تو ہم سب پہلے روح تھے، ہمارا جسم ایک روح کی شکل میں تھا. اور یہاں تھوڑا سا اس کو انجوائے کیجیے گا. آپ اور میں جب یہ کہتے ہیں نا، میں، میرا نام یہ ہے، میں وہ ہوں، میرے ساتھ یہ ہوگا، میرے ساتھ وہ ہوگا، تو یہ جو میں لفظ ہے نا، یہ آپ کے میرے اس وجود کا نام نہیں ہے، یہ ہماری اس روح کا نام ہے. اللہ نے ہم سب کو روحوں کی شکل میں پیدا کیا. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ان کے ساتھ ہی ساری روحیں جنہوں نے قیامت تک آنا ہے ان کو پیدا کر دیا. اب یہاں ایک جملہ لکھیں، ہم سب کی روحیں بوڑھی روحیں ہیں. ہم عموماً کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑی بوڑھی روح ہے، جو بندہ بہت مرا مارا ہو، دل ہی نہیں کرتا نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پہننے کو، نہیں بیٹھے ہی رہو، کیا کرنا ہے اب دنیا میں، تو دل کیا لگانا. تو ہم سب کی روحیں اولڈ ہیں. جسمانی طور پہ ہماری عمر کوئی نہ پوچھے، کیونکہ عورتوں کا ایک مزاج ہے. کیا آپ کی ایج کیا ہے؟ بس 30+. یعنی ہماری ڈکشنری ہے باہر کے ملک میں ایک، کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ جتنی بڑی ہو سکتی ہیں نا عمر میں، وہ 30+ ہوتی ہے. 30 تک بھی وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتی ہیں چلو اس اوکے، لگتی تو نہیں ہوں بٹ چلو. اور 30+10 بھی ہو سکتا ہے، 30+20، 30+30 بھی ہو سکتا ہے، تو جھوٹ تو نہیں ہے. تو آپ میری ایج پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گی؟ 30+. ٹھیک ہے، خوش. چلیے، اب روحیں جب بنی، اب آپ اس کو سمجھیے. اگر آپ نے کبھی فرنیچر خریدا ہو کسی ایسی کمپنی سے جہاں آپ کو فرنیچر بس پیک کر کے دے دیتے ہیں باہر، ایک بہت مشہور کمپنی ہے آئیکیا، ناروے میں اس کو ایکیا کہتے ہیں، امریکہ میں کچھ کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ ایک سویڈش کمپنی ہے. ان سے آپ ٹیبل لینے جائیں نا تو ایک ڈبہ پکڑا دیتے ہیں، اس میں اس کی ایک کیل، کانٹا، دھاگا، سوئی دھاگا ہوگا، گھر بیٹھ کے جا کے خود جوڑیں، اسمبل خود کرتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ سوچیے کہ ہم سب کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہ اسمبل ہو ہو کے اپنے ڈیٹ آف برتھ پہ دنیا میں آ رہی ہیں. تو پہلا سٹیپ کیا تھا؟ ہم بس روح تھے، جسم نہیں تھا، روح گزر گئی، سب ایک جیسے تھے، سب پیدا ہو گئے، قیامت تک پیدا ہونے والے ایک ایک بچے کی روح پیدا ہو چکی تھی. اس کے بعد اب میں اپنے اوپر لیتی ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئی. بچہ ماں کے پیٹ میں کب آتا ہے؟ جب کنسیو کرتی ہے ماں، یعنی ماں کا ایگ اور باپ کا سپرم ملتا ہے، زائیگوٹ بنتا ہے اور رحم میں بچہ رہتا ہے. اب یہاں ساتھ ہی ساتھ لکھتے جائیے، آپ کی میری روح کی عمر کیا ہے؟ جب سے آدم پیدا ہوا ہے. اب یہ غیب کا وہ حصہ ہے جس پہ جتنا قرآن سنت کہہ دے ہم مان لیں گے، جو وہ نہیں بتائے گا ہم نہیں مانیں گے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب ہم باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری زندگی دی. وہ کتنی ہوتی ہے؟ میکسیمم 9 مہینے 10 دن. 9 مہینے 15 ہوں گے، کوئی جلدی میں آ جاتا ہے تو 7-8 ماہ میں بھی آ جاتا ہے بیبی. اچھا، ماں کے پیٹ سیکنڈ فیز کیا؟ 9 ماہ. اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ دیکھیے، دنیا، آپ کی میری دنیا کی عمر. اب یہ تیسرا سٹیپ دیکھ لیجئے، دنیا، آپ اور میں آج یہاں کھڑے ہیں. یہاں تک सब ग्रीन सिग्नल है, हम सब एक जैसे थे, सबकी रूहें मुसलमान थी। कुल्लू मौलूदिन यूलद वलल फितरा, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, बाद में वो फिर जिस घर में जिस माहौल में हुआ वही बोली बोलने लगता है। तो जब हम इस दुनिया में आए तब तक हम सब यहाँ थे, आज आप और मैं यहाँ खड़े हैं, ये हमारी दुनिया है। पहले रूह थी, बहुत लंबा अरसा गुजर गया, माँ का पेट 9 माह कुछ थी, अब दुनिया। दुनिया में आप और मैं मैक्सिमम कितना रहेंगे, 60, 70, 80, इससे ज्यादा 90। इससे बात तो जीने में निरी शर्मिंदगी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्जल उम्र से पना मांगी, और हम सारी जिंदगी इसी की फिक्रें करते रहते, इसी की फिक्रें करते रहते। खैर, इस दुनिया की जिंदगी को जैसा बना ले, गुजर ही जाएगी, गुजर भी रही है। आज जितनी भी है, कल जितनी भी होगी, गुजर जाएगी। इसके बाद है जी हमारे ऊपर अगला दौर, कब्र। ये आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, ये ग्रीन और ये रेड, ये दो रंग के हो गए, एक ईमान वाले की जिंदगी, एक कुफर के साथ, एक अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ, एक नाफरमानी के साथ, कब्र। अब कब्र का जो वक्त है इसको बरजख कहते हैं। अब कब्र में आप और मैं दाखिल किए गए, कोई ईमान की हालत में, कोई कुफर की। जन्नत में जिन्होंने आगे जाके जाना है उनकी कब्र जन्नत का एक टुकड़ा है, और जिन्होंने नाउज़ बिल्ला अल्लाह ने उनको जो नेमतें दी थी उसकी नाकदरी की, तो उनके लिए कब्र का अजाब शुरू होता है। आगे देखिए, अब यहाँ से आज के जो हमारे टॉपिक आखरत है ना, इसके स्टेप्स हैं। अब सूर फूका जाएगा, जब सूर फूका जाएगा तो उस वक्त ईमान वाले को मुख्तलिफ तरह से महसूस होगा और गैर मोमिन को मुख्तलिफ तरह से दिखेगा। यहाँ से फिर सफर आगे चलेगा, मैदान हशर, हशर का मैदान होगा। ईमान वाले ग्रीन ट्रैक से चल रहे होंगे और कुफर वाले इससे चल रहे होंगे। इधर के जो मराहल है ना, ये आपको रेड और ग्रीन चैनल दिखाए जा रहे हैं। इस मैदान हशर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाहियां होंगी, ईमान वालों के हक में होंगी, यहाँ मुनकरीन के खिलाफ हुज्जतें होंगी, और ये सारा कुछ हशर की जमीन पे हो रहा होगा। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो स्टेप्स पता है ना, पहले किधर, काउंटर पे गए, बोर्डिंग पास लिया, लगेज दिया, फिर आगे गए, सिक्योरिटी से गुजरे और वट एवर, फिर जहाज तक जाते हैं ना, फिर फ्लाइट है। इसी तरह लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम्हें तबक पर तबक इसमें लेके जाया जाएगा। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बातें बता दी। अब वापस पीछे जाकर देखिए मैदान हशर में क्या कुछ होने वाला है। नंबर एक, हिसाब किताब, ईमान वाले का हिसाब उसके अमाल के मुताबिक, और जो ईमान वाला नहीं उसका हिसाब उसके हिसाब से होगा। मोमिनों को हिसाब यसीरा, और दूसरों को अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में, कैसा अजाब दूंगा जैसा किसी को नहीं दिया, ऐसे पकड़ूंगा जैसे किसी को नहीं पकड़ा। बोला यू सिकु वसा कहू अहत, रस्सियों से बांधे जाएंगे। इसी जगह पे फिर आपको किताबें मिलेंगी, नामे अमाल, मोमिनीन को दाएं हाथ में और गैर मोमिन का मामला उसके साथ है। इधर ही मीजान कायम होगी, ये सारा मैदान महशर है। इस मीजान को जरा देखिए, जब आपकी नेकियां और बदियां तुलेंगी ना, तो इसमें से ईमान वालों को तो हौज़े कौसर से पानी पिलाया जाएगा। और अहले ईमान का इम्तिहान क्या था, हौज़े कौसर से जब पानी पिलाया तो वहां कुछ मुनाफिक भी थे जिन्होंने बाद में नबी सल्लम के दीन को बदल दिया। आपको पानी पिलाने की कोशिश की जाएगी लेकिन फरिश्ते अल्लाह के नबी सल्लम को रोक देंगे। और इसी जगह से फिर ईमान वाले मुनाफिकीन सब का फर्क होगा। लेकिन आपने देखा कि ये मीजान के बाद मुनकरीन को हौज़े कौसर का पानी नसीब नहीं होगा। ये जो जहन्नम है ना, इससे पहले एक चीज है, मैं अक्सर समझाती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है उसको समझाने में। अगर एक तार के साथ समझें, कंतर, ये क्या है, पुल सरात है ये। इसका ये पहला सिरा जो है ना, ये मैदान महशर में है जहाँ हम सब का हिसाब होना है, और इसका आखिरी सिरा जो है ना, ये जन्नत में है। ये जो बीच है ना, ये सारा स्लोप किसके नीचे? जहन्नम है। वाई मिन को मिल्ला वारी दुहा, तुम्हें से हर एक किसके ऊपर से गुजरेगा। कुरान कहता है हम सब ने इससे गुजरना है। ये यहाँ से शुरू होके जब गुजरेंगे, हर एक अपने ईमान के मुताबिक गुजरेगा। लेकिन ये जो आखिरी सिरा है ना, बस जिसके बाद आप कहेंगे जहाज में सवार होना होता है, इस कोने का नाम है कंतरा। और कंतरा पे क्या होगा? हकुकुले बात का हिसाब होगा। सामने जन्नत दिख रही है। आपने वो हदीस कितनी दफा सुनी होगी कि दो लोग हैं और वो खड़े एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। एक कहेगा मुझे तुम्हारी नेकियां चाहिए, तुमने इस दुनिया में मेरा फलां जगह हक मारा था। दूसरा कहता है अगर तुम्हें दे दूंगा तो मैं कैसे जन्नत में जाऊंगा। उन दोनों को बुलाया जाएगा। का क्या बात है? वो कहते इसने दुनिया में मेरा हक मारा था। कोई भी मारा होगा, गीबत की, को माल खा लिया, को जायदाद हजम कर ली, तो आज तुम मांग रहे हो। तो वो कहेगा दो। वो कहता मैं दे दूंगा तो फिर मेरा एक किस्म का बोर्डिंग पास कैंसिल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला उनको दोनों को बुलाएगा, दूर एक मोती का महल दिखाएगा सफेद रंग का। वो शख्स जिसके पास हक था और वो नहीं दे रहा, अल्लाह ताला उसको कहेंगे तुम्हें वो मोती का महल चाहिए? कहेगा जी, इसीलिए तो मैं इसको अपनी नेकिया नहीं दे रहा, मैं दे दूंगा तो मैं कैसे जाऊंगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अगर तुम इसको ये माफ कर दो जो इसका हक है, दे दो अपनी नेकी, तो मैं तुम्हें वो अपनी रहमत से दे दूंगा। वो कहेगा ये पकड़ो, मुझे तो उधर ही जाना है ना। देखिए आप खुद टिकट पे करें या कोई दूसरा आपकी कर दे, आपका मकसद तो पहुंचना है ना। अब जब वो उसको माफ करेगा ना, तो उसके रास्ते की रुकावट ही ये था कि उसने उसका हक मारा था। वो तो अल्लाह की रहमत से चला गया, ये उसकी नेकियां लेके गया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, और आप मुस्कुराए कि आपके ये साइड के दांत नजर आए। आपने फरमाया फिर मैं देख रहा हूँ कि दोनों हाथ में हाथ डालकर जन्नत में जा रहे हैं। फॉरगिव फॉरगेट। हम दुनिया में अक्सर इंसानी मामलात के मामलात में बहुत केयरलेस होते हैं। हकीकत ये है कि हमें लोगों के मामले में नरम दिल होना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं नरम जुबान, कैसे? कोई मस्नूई तरीके होते हैं, कोई चापलूसी वाले अंदाज से बोलना? नहीं, दिल नरम कर लें, जुबान खुद नरम हो जाएगी। लोगों से मोहब्बत करें। आपके घर में आपके खिदमतगार, आपकी मेड्स, माली बाबे, ड्राइवर, शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने इनको इतने में रखा है, सुखरी बना दिया। कुरान कहता है कि अल्लाह ने बाज को तुम्हारे सुखरी बना दिया, यानी मुसखर कर दिया तुम्हें उन पे, तो तुम रोब डाल दो। ड्राइवर साहब इधर आओ। कहाँ थी मासी? कल ले गई पैसे, आज नहीं आएगी। मैं कहना नहीं चाह रही, माफ कीजिए, लेकिन पाकिस्तान में आके मैंने देखा है अक्सर खवातीन की सुबह मासियों की गिफ्तों से होती है, बदगुमानियों से होती है। ना करें, नहीं करते काम, ना करें, ना करें, छोड़ दें उनको। कभी अपनी जुबान का एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि ये बहुत अल्लाह का फजल है, उसने आपके मेरे ऐब छुपाए हैं। आपसे खूबसूरत होंगी कई, आपसे अक्लमंद होंगे कई, और आप कहते हैं ये मेरा ड्राइवर है, इसको अक्ल नहीं। अक्सर मैं लोगों की बातें सुनती हूँ ना, कभी पता नहीं ये किधर है, इसको बुला लो, आता नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो मैं उसके जवाब में अक्सर एक जुमला बोलती हूँ, अगर इसको इससे ज्यादा अक्ल होती ना तो ये आपके पास क्यों होता? आपके पास है इसलिए कि अक्ल में थोड़ा है। पैसे में ना थोड़ा होता तो क्या करता? कभी भी ना आता। अल्लाह ने दुनिया का निजाम किसी को ज्यादा दे के किसी को कम दे के चलाया, वरना क्या कहते हैं, तू भी राजा मैं भी रानी, हम होते सारे राजा रानी तो कौन भरेगा पानी। तो अल्लाह का ये निजाम है। तो ये जो कंतरा का मुकाम है ना, ये बड़ा ही खतरनाक है, बहुत खौफनाक है। इसको आज जिंदगी में रखें। यहाँ बैठे बैठे किसी को माफ कीजिए, किसी के बारे में सोचिए जिसकी ज्यादती की थी, जिस पे मैसेज कर सकते हैं कर दें, जाके माफी मांग सकते हैं कर दें, पैसे रुपए से कुछ तल्लाफी कर सकते हैं कर दीजिए, और खास तौर पे अपने से छोटे लोग। फिर यहाँ बात करूंगी इंसानी हकूक, इंसानों के मामला, जायदाद में हाथ तो नहीं किसी को दिया, भाई बहनों का वरासत का मामला। सारी जिंदगी माँ बाप कमाते रहते हैं, वही पैसा बाद में बहन भाइयों की आपस की दुश्मनियों और लड़ाइयों का जरिया बन जाता है। अल्लाह ने अपने हकूक 10 दफा छोड़ने हैं, लेकिन अगर बंदों ने बंदों के हकूक ना पूरे किए, उनका हक ना दिया, तो आप जानते हैं क्या होगा। तो लिहाजा इस चीज को महसूस करके अपने आप को कहिए कि अल्लाह मुझे कंतरा पे जाकर शर्मिंदा होने से बचा, जिंदगी में बचा, फिर कहीं जन्नत है। अब देखिए जहन्नम तो पीछे रह गई, इस जहन्नम के ऊपर यहाँ पुल सरात है और पुल सरात का कोना कंतर है और फिर जन्नत है। अब आप मुझे बताइए कि जब आपकी मेरी जिंदगी में इतने मुख्तलिफ मराहिल आने वाले हों तो क्या हम आराम से बैठेंगे? क्या हम चैन से सो सकते हैं? अल्लाह ना करे किसी का ऑपरेशन होने वाला हो, सोचे नींद आती? ऑपरेशन तो बड़ी दूर की बात है, अल्लाह सबको आपको सेहत दे, अंदर बाहर की बीमारियां दूर कर दे अल्लाह, रूहानी कल्बी नफसानी शुरूर सब से अल्लाह आपको बचा दे। लेकिन अगर बिलफर्ज आपको जो तकलीफ है जो परेशानी है उसके लिए डॉक्टर एक टेस्ट कहता है, वो क्या है कि इनका MRI करा दो, मुझे एक मशीन में डालते हैं, रात को नींद ही नहीं आएगी, खौफ होता है ना इंजेक्शन का, कई लोगों को फोबिया होता है, क्यों? इसलिए कि हम उसके लिए तैयार नहीं होते। तो अब चंद बातें लिखिए, क्यामत से मुराद एक ऐसा वक्त जब अल्लाह के हुक्म से सूर में फूक मारी जाएगी, सूर के ये मैं अगर डरे ना तो मारू, इसको और तेज कर ले। हदीस में आता है कि फरिश्ता इसराफील उसका नाम है, हमने इसी सीरीज में ईमान बिल मलाइका में एंजल्स को भी पढ़ा है, जिब्राइल वाला तो लाने वाला लेक्चर था। इसराफील अलैहि सलाम उन चार में से एक अहम फरिश्ते हैं जिनसे अल्लाह बड़े बड़े काम ले रहा है, इसराफील मिकाइल जिब्राइल और मलकुल मौत, ये चार फरिश्ते हैं जो मेन जिंदगी और मौत का निजाम चला रहे हैं। इसराफील पूरी इंसानियत के खात्मे का जरिया बनेंगे, कयामत आएगी। मलकुल मौत से पर्सन टू पर्सन ये दो फरिश्तों का नाम किससे ताल्लुक है? मौत से। और जिब्राइल बच्चे में रूह फूकने से लेकर बाकी मराहिल में साथ है, और मीकाईल बारिश बरसाते हैं जो पूरी दुनिया को करती है। ये मैंने आपको एक ट्रेलर दिया है, ईमान बिल मलाइका सीरीज सुनी है, अल्लाह ताला ने इसराफील को मुकर्रर किया हुआ, और हमने वहां पढ़ा था कि वो मुंह ऐसे हाथ में लेके खड़े हैं कि कब अल्लाह का हुक्म आए तो कुन फयकून हो जाए, एक खूब खौफनाक धमाके वाली आवाज आएगी जिससे कायनात का पूरा निजाम धर्म बरम हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा, और इस जमीन पे मौजूद हर जी रूह का खात्मा हो जाएगा, ना आपने रहना ना मैंने रहना। अभी 2 दिन पहले हमने एक पंजाबी उर्दू मिक्स लेक्चर किया है, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ये दुनिया तेरी ना मेरी, सब खत्म हो जाना है और आखिर में ये दुनिया मट्टी की ढेरी, आपने मैंने नहीं रहना, हम रहने के लिए बनाए ही नहीं गए, तो अल्लाह सुबहान तआला ने आपके मेरे लिए इस चंद 60-70 साल जिंदगी, और उसमें भी शऊर के 30-40 साल ही हैं, 10-12 साल बचपन निकाल दें और 60 के बाद अर्जल शुरू, हाफसा नहीं काम कर रहा, याददाश्त खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, ये काम का दौर है, इसमें अपने आप को यूज कीजिए। आप में ये मौजू क्यों सुन और सुना रहे हैं? गेट मोर फ्रॉम लाइफ, यही जिंदगी मिलती है। बच्चे को आप 1,000 का नोट दें कैंडीज ले आएगा, एक औरत को दे दें तो पता नहीं 1,000 का यहाँ क्या आता है, सब्जी आ जाती है, एक मुर्गी आ जाती है, ये ठीक है मुर्गी ठीक है, और आप 1,000 का नोट किसी बाशऊर इंसान को दें तो वो मेरे वाले को 20-25 ईंटें तो आ ही जाएंगी ना, वो 20-25 ईंटें लेकर मस्जिद में लगवा देगा और वो उसके बाद चलेंगी। एक बहुत प्यारे स्कॉलर थे हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी, अपने कॉलेज में प्रिंसिपल थे लेकिन सादा थे, कहते हैं कि धोती पहन के जाते थे कॉलेज में पढ़ाने, कभी आप ऑनलाइन उनका कुछ सर्च करके सुने ना, ईमान में डूबे हुए लेक्चर थे उनके। तो वो एक वाक्या सुना रहे थे अपनी एक स्पीच में कि बेटे को भेजा कुछ लेने के लिए, और उस दौर में आज से 20-25 साल पीछे की बात है, कोई चीज मंगाई दूध दही, नोट दे दिया उसको 5 रुपए का, जब वापस आया तो कहा कितने का आया है? कहा 4.5 रुपए का। तो कहा वो ठन्नी किधर है? 50 पैसे। कहूंगा मैंने नहीं वापस ली, मैंने कहा कीप इट, मैंने नहीं ली वापस। कहेंगे अल्लाह के बंदे लेके आ, वो लेके आ, उस दौर में 50 रुपए में 6 इंटे आती थी, कहा उससे वो 50 रुपए पकड़ना, नहीं 50 पैसे ठन्नी, और उसकी चंद ईंटें लेके ना वो मस्जिद बन रही थी उधर दे आता। हम ऐसे बहुत सारे लोग अपने रिसोर्सेज के साथ यही साहूकाराना रवैया अख्तियार कर रहे हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोग अपने रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे हैं। फालतू लाइट्स चल रही हैं, कोई है ही नहीं कमरे में, पंखे चल रहे हैं, एक बल्ब के साथ एक बटन पे से 10 लाइट हैं। और चले आप यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही आज अपने लिए खोंगो क्लिक है। अपने घर में घुसने से लेके वापस बाहर आने तक पूरा राउंड ले, घर का कौन सा कोना जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, सिर्फ बिल आ रहे हैं। इत्तफाक से कल हम एक ऐसी जगह से गुजरे, कल का लेक्चर था उधर, बल्कि रास्ते में और भी जगह थी, हर दूसरा घर खाली, छोटा सा गांव और कोठियां हवेलियां। आप यूट्यूब से भी चेक कर लें, शहर का नाम मैं नहीं लेती, जरूरत नहीं है, वहां की वीरान हवेलियां कल मेरी इन आंखों ने अपनी आंखों से देखा। ये फलां फलां बाहर है, घर इधर बने हुए। और मैं जो जानती हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे बदगुमानी से, आधे से ज्यादा लोग उधर कर्जों पे घर लेके रह रहे हैं और इधर घर है और खाली, बल्कि मुलाजमों की मौजें, पे भी काम भी रहते भी और घर वीरान, बंद कर रहे हैं तो आपको पता है कि वैसे ही खराब हो जाते हैं। क्या फायदा, कल हिसाब देना पड़ेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन। जिंदगी को आप मुख्तसर कीजिए, आपकी उम्र अगर 40 से ऊपर हो गई है ना तो आप पैकिंग शुरू कर दें। देखिए अल्लाह करे आपको उम्रे पे जाना हो, आज 18 दिसंबर है, 20 को जाना है आपने, आज क्या आपके घर में हलचल दिख रही होगी? मेरा लग कोई जरा फिक्रमंद लोग हैं वो तो करके पैक बैठे होंगे, ये करना है वो करना है, आखिरी वक्त तक भी फिक्रमंद रहते हैं। तो अब हमें पैकिंग करनी है। जिंदगी को मुख्तसर कीजिए, ये सफरों ने मुझे यही सिखाया है। मेरे लिए यानी जिंदगी का अब सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस क्या है कि मेरे हाथ में एक कैरी ऑन हो और उसमें मेरी मर्जी की जरूरत की चीजें जो सफर में यूं ही पकड़ के आ जाऊं। क्यों, सफर में आपके चीजें होती हैं, आपके पास मौका ही नहीं होता पहनने का, कौन निकाले कौन रखे कौन उठाए। तो जो खा सकते हैं खाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पहन ले, लेकिन जो बोझ है ना उसको डेलीगेट करते हैं। अपने वो कपड़े जो आपके काम में नहीं आ रहे उसका कोई इधर मरकज बनाकर लोगों को दीजिए कि आप पहन लें, आपके घर शादी आएगी आप भी पहन लीजिए, किसी बच्ची की शादी है उसको वो कपड़े दे लें कि वो शादी का जोड़ा क्यों बना, हर दुल्हन एक ही जैसी लगती है, तो हर शादी पे 5-6 लाख का जोड़ा, कभी आपने सुना था ये बातें?